परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब प्रभु की निकटता में रहकर कुशलता पूर्वक से होंगे और उसके वचन की संगति में बढ़ रहे हैं। मैं यह भी आशा करता हूं कि आप सब प्रतिदिन की तरह आज भी प्रभु के वचन में से सीखने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन को आरंभ करें, मैं आपको पिछले अध्ययन के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। पिछले अध्ययन में हमने दुख और व्याथा के साथ महाक्लेश को देखा था। यीशु अपने फिर से आने के विषय में उन्हें सांत्वना देते हैं और अंजीर के पेड़ का दृष्टांत एक चिन्ह के रूप में देते हैं। इन्हीं मुख्य विषयों पर हमने अध्ययन किया था और आज हम उससे आगे के पदों पर विचार करेंगे। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 40 और 41 पद को पढ़ें। यहां पर लिखा है, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मित्रों, मैं सुन सकता हूं कि कोई मुझसे कह रहा है, प्रचारक साहब ठीक है, अंततः आपने अपना एक मत बना ही लिया। आपने कहा था कि कलीसिया का ऊपर उठाया जाना जैतून के उपदेश में नहीं है, परंतु वे यहां पर हैं। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मेरे मित्र, यह ठीक है, फिर भी वह ऊपर उठा लिए जाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे प्रभु यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? नूह के दिनों के समान होगा। नूह के दिनों में किसे उठा लिया गया? जब तक जल प्रलय उनको बहा ना ले गया, वे इसे समझ ना सके। वे जल प्रलय में नाश हो गए। यह उस समय भाव समाधि की ओर संकेत नहीं करता है। जब कलीसिया संसार से उठा ली जाएगी, उस समय के उठा लिए जाने के विषय में यह बात नहीं करता है, बल्कि न्याय के द्वारा पृथ्वी पर से हटाने के ये तस्वीर उन लोगों के लिए है, वे जो हजार वर्ष के राज्यकाल में प्रवेश नहीं करेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 42 पद में आगे पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मित्रों, यहां पर शब्द जागते रहो महत्वपूर्ण है और यह जागते रहने का अर्थ उस जागते रहने या इंतजार करने से अलग है जो आज परमेश्वर की संतान उठा लिए जाने या उठा लिए जाने के लिए करती है। आज हमारे पास एक सांत्वना देने वाली आशा है। उस आने वाले दिन में यह जागना डर और चिंता के साथ होगा। रात्रि के समय में वे कहेंगे, क्या परमेश्वर सुबह होंगे? और सुबह के समय वे कहेंगे, क्या संध्या परमेश्वर होंगे? आज हमें उसका इंतजार करना है और उसके आने के लिए इच्छा रखनी है। उस आने वाले दिन में वे चिंताग्रस्त होकर उसके वापस आने का इंतजार करेंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं बाल की खाल निकाल रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। जब मैंने यूनानी भाषा में जागते रहो शब्द का अर्थ देखा तो पाया कि इसके तो 8 अलग अलग अर्थ हैं। यद्यपि अंग्रेजी में हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द है और इसके अनेक अर्थ भी हैं। तो आइए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता दूं। एक व्यक्ति जो हिरण की शिकार पर जाता है, यह व्यक्ति प्रत्येक वर्ष जंगल में उसी स्थान पर जाता है, वहां पर तंबू लगाता और भोर को ही शुकर कटक की तलाश में पहाड़ी पर जाता है और किसी पुराने पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ जाता है और उसके आने का इंतजार करता है। कुछ समय के बाद वह एक आवाज झाड़ झंकार से सुनता है और वह सोचता है कि हो सकता है यह एक हिरण है। वह अपने बंदूक को उठाकर उसके आने का इंतजार करता है। वह एक हिरण की प्रतीक्षा कर रहा है। मित्रों, 2 हफ्ते के बाद आप इसी व्यक्ति से शहर के सड़क के एक किनारे पर मिलते हैं और आप देखते हैं कि वह उत्सुकता से सड़क पर नीचे की ओर देख रहे हैं। आपको मालूम हो कि वह किसी का इंतजार कर रहा है। आप उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं, आप किसकी इंतजार कर रहे हैं? वह कहता है, मैं अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा हूं जिसने आने में 45 मिनट देर की है। वह फिर से यहां पर किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु यह एक दूसरे प्रकार का हिरण है और वह एक अलग तरीके से इसका इंतजार कर रहा है। पहले वह पहाड़ पर अपने हिरण मारने वाली बंदूक के साथ था और उसकी इच्छा है कि काश वह बंदूक उसके साथ फिर से होती, परंतु पत्नी को गोली मारनी कानून के विरोध में है। वह उसे नहीं मार सकता है, परंतु वह उसका इंतजार एक अलग तरीके से करता ही जा रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। एक या दो महीने के बाद आप अस्पताल में जाते हैं और जब आप एक कमरे के पास से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वही व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर बैठा है और उनके पास एक नन्हा बालक है। इस बच्चे को तेज बुखार है और डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि उसकी हालत बीच रात में अधिक बिगड़ सकती है, इसलिए वे जाग रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र, यह अलग प्रकार की प्रतीक्षा है। यह एक हिरण के इंतजार करने से और प्रिय पत्नी का इंतजार एक कोने में खड़े होकर करने से बिल्कुल भिन्न है। यह चिंता के साथ इंतजार करना है और मैं सोचता हूँ कि इसी तरह के अनुभव के साथ वे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए भी इंतजार करेंगे। मित्रों, हम मत्ती 24 अध्याय उसके 43 से 45 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। मित्रों, हमारे प्रभु जैतून के उपदेश के बचे हुए हिस्से में उनके आने के विषय में लोगों का व्यवहार और जब वो वास्तविक रूप में आएंगे तब क्या होगा, इसके विषय में बताने के लिए दृष्टांत को देते हैं। हम मत्ती 24 अध्याय उसके 46 से 51 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियंकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोहता हो और ऐसी घड़ी कि वह ना जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मित्रों, यह दृष्टांत उस दिन भविष्य में लोगों के व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है। वे कहेंगे, ठीक है प्रभु, यीशु आने में देर कर रहे हैं, इसलिए मैं अपना जीवन असावधानी पूर्वक जीऊंगा और जब मसीह आएंगे तो वह उस व्यक्ति का न्याय करेंगे। मित्रों, यह एक महान सिद्धांत है जो प्रत्येक युग के लोगों के लिए लागू होता है। मुझे और आपको अपना जीवन इस वास्तविकता की ज्योति में जीना है कि हमें यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। यहाँ पर ध्यान दें कि मैंने यह नहीं कहा है कि मसीह के आगमन के प्रकाश में, परंतु मसीह की उपस्थिति के प्रकाश में कहा है। चाहे मसीह आज से 100 साल के बाद या 1000 साल के बाद आए, आप और मैं उनकी उपस्थिति में खड़े होंगे। चाहे आप उद्धार पाए हो या नहीं, आप उनकी उपस्थिति में खड़े होंगे। यदि आपने उधार प्राप्त किया हुआ है तो आपको उससे अपने जीवन का हिसाब देना है, ताकि देखें कि आपको उपहार प्राप्त होगा या नहीं। यदि आपने उधार प्राप्त नहीं किया है तो आप वहां पर न्याय के लिए खड़े होंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को इस सत्यता की प्रकाश में रखे और जिए कि उसे प्रभु के सामने खड़ा होना है। मित्रों, जैतून के उपदेश की एक या बड़ी विशेषता है, इसलिए हम सबों के लिए उपयोगी है। यद्यपि यह व्याख्या स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के एक राजा के रूप में लौटने के समय जीवित होंगे। हाँ, तो मित्रों, यहाँ पर 24 अध्याय समाप्त होता है और अब हम 25 अध्याय से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इस अध्याय में हम देखेंगे कि जैतून के उपदेश जारी हैं। 10 कुंवारियां, तोड़े का दृष्टांत और गैर यहूदी राष्ट्र का न्याय। मित्रों, यह अध्याय मत्तीरचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 3 के प्रश्न हैं। तेरे आने का क्या चिन्ह होगा? यीशु के द्वारा दिए गए उत्तर पर आगे बढ़ता है। यहाँ पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत है जो इसराइल के विश्वास की असलियत का परीक्षण या जांच करता है, और तोड़ों का दृष्टांत उसके सेवक के विश्वास योग्यता का परीक्षण करता है, और अन्य जातियों के राष्ट्र का न्याय उनके राज्य में दाखिल होने के अधिकार का परीक्षण करता है। यह अध्याय मसीह के आने के अभिप्राय को बताता है और उन लोगों के साथ इसे जोड़ता है जो उस समय संसार में रहेंगे। मित्रों, यह प्रत्येक समूह का एक अच्छा विश्लेषण प्रकट करेगा कि यह व्यक्तिगत स्वभाव और यीशु मसीह के संबंध के लिए नग्नीकृत होने तक नीचे गिर सकता है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत उन लोगों के लिए आधार है जो आंशिक रूप में विश्वास करते हैं कि वे उठा लिए जाएंगे, जिसमें कुछ ही लोग संसार से उठा लिए जाएंगे। यह आंशिक रूप में उठा लिए जाने पर विश्वास करने वाला दल या समूह एक बहुत ही अच्छे लोगों के द्वारा बना है। एक बार मुझे एक बाइबल अध्ययन समूह में शामिल होने का मौका मिला और वहां के लोगों ने मुझे इस अध्ययन में शामिल होने के लिए उत्साहित किया, लेकिन उस अध्ययन को जो आरंभ से ही ले रहा था वह खंड भाव समाधि पर विश्वास करने वाला था, अर्थात अंश अंश में उठा लिए जाने पर विश्वास करता था। यह दल विश्वास करता है कि सबसे अधिक आत्मिक लोग सबसे पहले प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे और उसके बाद फिर अन्य लोग अंश अंश या अलग अलग भागों में उठाए जाएंगे। मैं निष्पक्षता के साथ ऐसा महसूस करता हूँ कि खंड भाव समाधि का सिद्धांत आत्मिक अभिमान की सेवा करता है। मैं आज तक ऐसे समूह से नहीं मिला जो यह सोचता है कि वह 5 बुद्धिमान कुंवारियों के साथ नहीं है, और वास्तव में अब तक के जीवन में मैं किसी एक से भी नहीं मिला जिसने सोचा कि उसे 5 मूर्ख कुंवारियों के साथ रखा गया है। जब मैं ऐसे समूह के करीब आया तो उन्होंने भरोसे के साथ यह महसूस नहीं किया कि मैं उनमें से एक था। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे मूर्खों के साथ में रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब भाव समाधि होगा, अर्थात उठा लिए जाने का समय आएगा, तब सभी विश्वासी उठा लिए जाएंगे और हम सब अपनी योग्यता के आधार पर नहीं जाएंगे। हम सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह के कारण यहाँ से जाएंगे। वह अनुग्रह के द्वारा हमें बचाते हैं और हमें अनुग्रह के द्वारा ही रखते हैं। वह हमें इस संसार से अनुग्रह के द्वारा ही बाहर निकालेंगे और जब हम वहां पर अनंत काल तक रहेंगे तो यह भी अनुग्रह के द्वारा ही होगा। मित्रों, ये 10 कुंवारियां कलीसिया की ओर संकेत नहीं करती हैं, परंतु वे इसराइल राष्ट्र की ओर संकेत देती हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमें प्रभु को इन लोगों के प्रश्नों को उत्तर देने देना चाहिए। वे जो उसके शिष्य थे उन्होंने उससे प्रश्न पूछा था, और यदि हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि वह हमसे किसी विषय पर बातें कर रहे हैं तो पूर्णता भिन्न है, तो यह उसे बाधा पहुंचाने के जैसा है। तो आइए उसकी सुने और जाने। यद्यपि वह किसी और से बातें कर रहे हैं, परंतु हम इन अद्भुत दृष्टांतों को अपने जीवन में लागू करें। आइए देखें 10 कुंवारियों का दृष्टांत। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, तब स्वर्ग के राज्य की तुलना उन 10 कुंवारियों से की जाएगी जो अपने दीपक लेकर दूल्हे से मिलने को निकली। मित्रों, नए नियम के समय में इसराइल के रीति रिवाजों को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पेशीता को देखना होगा जो सीरिया भाषा की एक बाइबल है। यद्यपि यह ऐसा मूल पाठ नहीं है जिसे अनुशंसित किया जाए, परंतु यह निश्चित रूप से या रीति रिवाज की कुछ बातों के ऊपर प्रकाश डालता है जो उन दिनों में थे। हमारे सामने जो पद या वचन है उसका पेशीदा अनुवाद हमें बताते हैं कि कुंवारियां दूल्हे से और दुल्हन से मिलने के लिए गई, जिसका मतलब है कि दूल्हा विवाह के बाद विवाह भोज के लिए आ रहा है। मेरा यह मानना है कि यद्यपि मसीह और कलीसिया का विवाह स्वर्ग में होगा, परंतु विवाह का भोज इस पृथ्वी पर होगा। लुका रचित सुसमाचार का 1 परिच्छेद इसका प्रमाण देता है, जैसे कि हमारे प्रभु चेतावनी और दृष्टांतों में दे रहे हैं। वे कहते हैं, जिसे हम लुका 12 अध्याय उसके 35 और 36 पद में पढ़ते हैं, तुम्हारी कमरे कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की जब तक ब्याह के भोज से लौटकर आता हो बाट जोते रहते हैं कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत खोल दें। आप यहां पर देखें कि विवाह हो चुका है और दुल्हन उसके साथ में है। यह बिल्कुल सच है कि जब वह विवाह से लौट रहे हैं तो दुल्हन उसके साथ में होगी। कोई भी व्यक्ति स्वयं से हनीमून के लिए कभी नहीं गया, यद्यपि वह ऐसा करता है तो वह हनीमून नहीं है। मित्रों, यहाँ पर 10 कुंवारियों के दृष्टांत में यीशु मसीह को दूल्हे के रूप में दर्शाया गया है जो अपनी दुल्हन के साथ आ रहा है, और पृथ्वी पर विश्वासी लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। जब इस पृथ्वी पर महान क्लेश चल रहा होगा, उस समय मसीह स्वर्ग में अपनी दुल्हन अर्थात कलीसिया के साथ होंगे, और 7 साल की महान क्लेश के अंत में वह फिर से इस पृथ्वी पर कलीसिया के साथ वापस आएंगे। अब उनके आने का यह विचार उन लोगों के प्रति है जो पृथ्वी पर हैं। हम मत्ती सुसमाचार के 25 अध्याय और उसके 2-4 पद में आगे पढ़ते हैं। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। मित्रों, तेल परमेश्वर की आत्मा का प्रतीक है, और मैं सोचता हूँ कि उन दिनों में ध्वनि हुई होगी, जिस प्रकार उसके प्रथम आगमन पर दिखावटी लोग थे जिन्हें यीशु ने उन्हें ढोंगी या पाखंडी कहा, क्योंकि उनके पास दीपक होंगे पर तेल नहीं होंगे। हम मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय और उसके 5-7 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि दोनों ही अर्थात बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियां सो गई, परंतु यहां पर अंतर सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों के पास पवित्र आत्मा था, तेल जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और कुछ लोगों के पास नहीं था, क्योंकि वे सच्चे विश्वासी नहीं थे। हमारे प्रभु इस दृष्टांत का एक चेतावनी के साथ अंत करते हैं, जिसे हम मत्ती 25 अध्याय और उसके 13 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। यहां पर ध्यान दीजिए कि यह दिन है, घंटा नहीं, शताब्दी या साल नहीं, जैसा हम लोग सोचते हैं। इस भविष्यकाल के दौरान अपने लोगों का व्यवहार जागते रहने का होना चाहिए, और उनके लिए इस बात को करना अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, अब हम तोड़ों का दृष्टांत देखते हैं। यह एक दूसरा दृष्टांत उस आने वाले भविष्य की पीढ़ी के लिए है जो हमारे प्रभु के इस पृथ्वी पर आने की प्रतीक्षा में होगी। हम मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय उसके 14 और 15 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। यहां पर ध्यान दीजिए कि उनके स्वामी ने अपने दासों को उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी सौंप दी। हम मत्ती 25 उसके 16 और 17 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मित्रों, यहां पर ध्यान दें कि तोड़े या रुपए पैसे के रूप में थे, यह किसी प्राकृतिक योग्यता की बात नहीं है, जैसे वाद्य यंत्र बजाने की योग्यता। तो यहां पर निष्कर्ष यही निकलता है कि जो योग्यता परमेश्वर ने हमें दी है उसे उसकी महिमा के लिए ही उपयोग करना चाहिए। हम मत्ती 25 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। सबको कुछ रुपए दिए गए और उन्हें कहा गया कि इसका उपयोग लाभ कमाने के लिए करें, परंतु एक ने अपने रुपए को गड्ढा खोदकर छिपा दिया जो उसे दिया गया था। वह अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य नहीं था। हम मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय उसके 19 से लेकर के 25 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छीटता वहाँ से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। अब उसके स्वामी का प्रत्युत्तर इस प्रकार था, जिसे हम मत्तयी सुसमाचार 25 अध्याय उसके 26 से 30 पदों में पढ़ते हैं। लिखा है, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। मित्रों, इस दृष्टांत में हमारे लिए एक महान सिद्धांत है और यह उस वास्तविकता के प्रकाश में हम सबके लिए दिया गया है जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। वो यह है कि हम सबको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होना है और जो कुछ उसने हमें दिया है इसका हिसाब देना है, उसका हमने किस प्रकार से उपयोग किया है। परमेश्वर हमसे यह पूछने नहीं जा रहे हैं कि हमने उसके लिए कितना काम किया, परंतु हम उसके कार्यों के प्रति कितना विश्वास योग्य रहे, जिसे वह चाहता था कि हम करें। मित्रों, परमेश्वर के संतानों के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, यह ढूंढ निकालें कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें, अर्थात यह निश्चित करें कि उसने हमें कौन सी योग्यता दी है, और तब दूसरा, उस योग्यता का उपयोग करने में विश्वास योग्य बने। हम में से कुछ लोगों के लिए परमेश्वर बहुत छोटी या थोड़ा सेवा देते हैं और हो सकता है कि यह हम सबों को दुखी करता हो, परंतु यदि हम एक ही योग्यता या तोड़े के लोग हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उसमें विश्वास योग्य बने। जी हाँ, यही परमेश्वर की इच्छा है, और जो भी योग्यता या तोड़ा आपको या मुझे दिया गया है हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने। आज निर्णय हम सबके हाथों में है कि हम किस दल में शामिल हैं, उन 5 मूर्ख कुंवारियों में या बुद्धिमान लोगों में। आप एक तोड़े वाले व्यक्ति के समान हैं या 5 तोड़े वाले व्यक्ति के समान। मित्रों, निर्णय लेना आपका काम है। आज हम इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस विचार को आपके साथ छोड़ते हैं कि आप एक सही निर्णय लेंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
दर बदर भटके रहे दीन दुखी लाचार, हर तरफ आतंक है जात धर्म की दीवार, हो एकता प्यार यीशुआ 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 पे दया करना सृष्टि के सृजनहार,
मेरे भारत पे दया करना सृष्टि के सृजनहार। सृष्टि के सृजनहार,
कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार,
कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार,
मेरे भारत पे दया करना सृष्टि के सृजनहार,
मेरे भारत पे दया करना सृष्टि के
तोड़ दे नफरत की दीवार को, भर दे हर दिल की दरार को, घायल यहाँ हर आदमी इशफा तू हर गुनहगार को, शिफा तू हर गुनहगार को। मेरे भारत की दुआ सुनना है ये हमारी पुकार,
मेरे भारत पे दया करना सृष्टि के सृजनहार।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरे भारत की रक्षा करना यीशु तू ही है उद्धार,
मेरे भारत पे दया करना सृष्टि के सृजनहार,
कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार,
कोई नहीं बचाने वाला तुम बिन तारनहार,
मेरे भारत पे दया करना सृष्टि के सृजनहार,
मेरे भारत पे
सृजनहार।
जय।